नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Knot Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जेरेमी बर्न की डिजिटल लाइटिंग एंड रेंडरिंग 3 आयामी कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए प्रकाश, छाया और अंतिम छवि निर्माण की कला व तकनीक पर केंद्रित मार्गदर्शक पुस्तक है। इसका लक्ष्य किसी एक सॉफ्टवेयर के बटन सिखाना नहीं, बल्कि उन सिद्धांतों को स्पष्ट करना है जिनसे किसी दृश्य का मूड, पठनीयता, गहराई और विश्वसनीयता बनती है। पुस्तक फिल्म, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स की प्री रेंडर्ड उत्पादन पद्धतियों के संदर्भ में लिखी गई है, फिर भी इसके अनेक आधारभूत विचार रियल टाइम दृश्यों और गेम सिनेमैटिक्स में उपयोगी है। बर्न प्रकाश डिजाइन, सरफेस शेडिंग, रंग, छाया, ऑक्लूजन, कैमरा, एक्सपोजर, कंपोजिशन और रेंडरिंग एल्गोरिदम को एक जुड़े हुए निर्णय तंत्र के रूप में देखते हैं। साथ ही यह लेयर्स, पासेज और प्रोडक्शन पाइपलाइन के माध्यम से व्यावहारिक समस्या समाधान पर ध्यान देती है। इसीलिए यह पुस्तक केवल सुंदर फ्रेम बनाने की प्रेरणा नहीं देती, बल्कि यह समझ विकसित करती है कि दृश्य अपेक्षित रूप से काम क्यों नहीं कर रहा और उसे व्यवस्थित ढंग से कैसे सुधारा जाए। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, लाइटिंग डिजाइन को सजावट नहीं, दृश्य संचार का साधन मानना। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि डिजिटल लाइटिंग का काम केवल किसी मॉडल को दिखाई देने लायक बनाना नहीं है। प्रकाश दर्शक का ध्यान नियंत्रित करता है, स्थान की अनुभूति बनाता है, समय और वातावरण का संकेत देता है तथा दृश्य की भावनात्मक दिशा तय करता है। इसलिए प्रकाश लगाने से पहले यह समझना आवश्यक है कि फ्रेम में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु या क्रिया क्या है, दर्शक की नजर किस क्रम में चलेगी और कौन से हिस्से जानबूझकर कम प्रमुख रखे जाएंगे। बर्न इस दृष्टि को फिल्मी लाइटिंग और कंप्यूटर जनित इमेजरी के बीच की साझा भाषा के रूप में रखते हैं। एक ही 3 आयामी सेट अलग प्रकाश व्यवस्था में विशाल, संकुचित, शांत, भयावह या नाटकीय लग सकता है। इसका कारण केवल रोशनी की मात्रा नहीं, बल्कि दिशा, कंट्रास्ट, रंग, फैलाव और स्रोतों के पारस्परिक संबंध है। पुस्तक कलाकार को अनियोजित ढंग से लाइट जोड़ते जाने के बजाय स्पष्ट दृश्य उद्देश्य से शुरुआत करने की ओर ले जाती है। यह पद्धति खास तौर पर उपयोगी है क्योंकि तकनीकी रूप से सही रेंडर भी असफल हो सकता है यदि विषय स्पष्ट न हो या फ्रेम में प्रकाश का पदानुक्रम न बने। इस तरह लाइटिंग डिजाइन रेंडरिंग से पहले लिया गया रचनात्मक निर्णय बन जाता है। दूसरा, छाया और ऑक्लूजन से वस्तुओं का भार, दूरी और संपर्क स्थापित करना। डिजिटल दृश्य में गहराई और विश्वसनीयता के लिए छाया अनिवार्य है, लेकिन पुस्तक इसे केवल प्रकाश रोकने से बनी काली आकृति तक सीमित नहीं करती। छाया दर्शाती है कि कोई वस्तु जमीन पर टिकी है या तैर रही है, दो सतहों के बीच कितनी दूरी है, प्रकाश स्रोत कितना बड़ा या छोटा है और वातावरण कितना खुला या घना है। तीखी किनारी वाली छाया अपेक्षाकृत छोटे या दूर स्थित स्रोत का आभास दे सकती है, जबकि मुलायम छाया बड़े अथवा फैले स्रोत से जुड़ी होती है। यह अंतर दृश्य के पैमाने और मूड को बदल देता है। ऑक्लूजन का महत्व उन संकरी जगहों पर उभरता है जहां सतहें मिलती है और परिवेश से आने वाला प्रकाश कम पहुंचता है। उचित ऑक्लूजन संपर्क बिंदुओं, दरारों और परतों को स्पष्ट कर सकता है। फिर भी पुस्तक का व्यावहारिक संकेत यह है कि इसे हर जगह गहरा कर देना समाधान नहीं है। अत्यधिक अंधेरा ऑक्लूजन सामग्री को मैला, भारी और कृत्रिम बना सकता है। कलाकार को प्रत्यक्ष प्रकाश, अप्रत्यक्ष प्रकाश, परावर्तन और छाया की भूमिकाएं अलग समझनी होती है। इसी संतुलन से पात्र, वास्तु और प्रॉप्स एक ही स्थान के विश्वसनीय हिस्से लगते हैं, अलग अलग कंप्यूटर मॉडल नहीं। तीसरा, सरफेस शेडिंग और रंग विज्ञान से सामग्री की पहचान बनाना। किसी वस्तु का रंग केवल उसकी टेक्सचर फाइल से निर्धारित नहीं होता, वह प्रकाश के रंग, तीव्रता, दिशा, सतह की खुरदराहट, चमक, पारदर्शिता और आसपास के परावर्तित प्रकाश के साथ बदलता दिखाई देता है। डिजिटल लाइटिंग एंड रेंडरिंग इसीलिए सरफेस शेडिंग को प्रकाश व्यवस्था से अलग विभाग नहीं मानती। धातु, कपड़ा, त्वचा, कांच और रंगी हुई दीवार एक ही रोशनी को अलग तरह से ग्रहण या परावर्तित करते हैं, इसलिए समान लाइट सेटअप उन सबके लिए समान परिणाम नहीं देगा। पुस्तक रंग के वैज्ञानिक और कलात्मक दोनों पक्षों से जुड़ती है। रंग तापमान, कंट्रास्ट और आपसी रंग संबंध दर्शक को प्रकाश स्रोतों, वातावरण और दृश्य के भाव का संकेत देते हैं। उदाहरण के लिए, ठंडी परिवेश रोशनी और अपेक्षाकृत गर्म मुख्य रोशनी विषय को पृष्ठभूमि से अलग कर सकती है, लेकिन इसका उपयोग दृश्य की जरूरत के अनुसार होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि रंग सुधार को बाद की प्रक्रिया मानकर मूल शेडिंग की समस्याओं को छिपाया नहीं जा सकता। यदि सामग्री की प्रतिक्रिया गलत है तो अतिरिक्त संतृप्ति, चमक या रंग परिवर्तन केवल त्रुटि को अधिक स्पष्ट कर सकते हैं। पुस्तक कलाकार को यह जांचने की आदत देती है कि क्या सतह प्रकाश के नीचे अपने पदार्थ जैसी व्यवहार कर रही है। चौथा, कैमरा। एक्सपोजर और कंपोजिशन को रेंडर की तकनीकी सेटिंग से आगे समझना। कंप्यूटर ग्राफिक्स में कैमरा और एक्सपोजर अक्सर तकनीकी चरण समझे जाते हैं, पर पुस्तक उन्हें दृश्य अर्थ निर्माण का हिस्सा मानती है। कैमरे की स्थिति, लेंस जैसा परिप्रेक्ष्य, फ्रेमिंग और कोण यह तय करते हैं कि दर्शक स्थान को कैसे पढ़ेगा और किस वस्तु को प्राथमिकता देगा। कंपोजिशन का उद्देश्य केवल संतुलित छवि बनाना नहीं, बल्कि नजर को अनावश्यक भटकाव से बचाते हुए मुख्य दृश्य सूचना तक पहुंचाना है। इसी तरह एक्सपोजर उजले और अंधेरे क्षेत्रों के संबंध को नियंत्रित करता है। बहुत अधिक एक्सपोजर में महत्वपूर्ण सतह विवरण उड़ सकते हैं, जबकि बहुत कम एक्सपोजर में छाया वाले क्षेत्र अस्पष्ट हो सकते हैं। फोटोग्राफिक एक्सपोजर की समझ कलाकार को डिजिटल कैमरे के परिणामों को अधिक विश्वसनीय ढंग से नियंत्रित करने में सहायता देती है। पुस्तक का व्यापक तर्क यह है कि प्रकाश, कैमरा और कंपोजिशन को अलग अलग सुधारने के बजाय साथ देखना चाहिए। यदि पात्र पृष्ठभूमि में खो रहा है तो केवल उसकी लाइट बढ़ाना हमेशा सर्वोत्तम उपाय नहीं। कैमरा कोण, पृष्ठभूमि का टोन, फ्रेम में खाली स्थान और कंट्रास्ट भी समाधान का हिस्सा हो सकते हैं। यह संयुक्त दृष्टि परीक्षण और संशोधन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाती है। अंत में लेयर्स, रेंडर पासेज और पाइपलाइन के जरिए नियंत्रित समस्या समाधान पुस्तक की व्यावसायिक उपयोगिता का एक प्रमुख पक्ष उत्पादन प्रक्रिया है। जटिल फिल्म और विजुअल इफेक्ट शॉट में अंतिम छवि को एक ही अविभाज्य रेंडर के रूप में संभालना कठिन होता है, इसलिए प्रकाश योगदान, छाया, परावर्तन और अन्य दृश्य घटकों को अलग रेंडर पासेज या लेयर्स में व्यवस्थित करना सुधार और कंपोजिटिंग को अधिक नियंत्रित बना सकता है। इस पद्धति का लाभ यह है कि अंतिम चरण में हर समस्या के लिए पूरा दृश्य दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बर्न का दृष्टिकोण केवल तकनीकी विभाजन तक सीमित नहीं है। पासेज तभी उपयोगी है जब कलाकार को पता हो कि किस घटक को क्यों अलग किया जा रहा है और बाद में उसे कैसे संतुलित किया जाएगा। अव्यवस्थित लेयरिंग निर्णय को आसान करने के बजाय भ्रम बढ़ा सकती है। पुस्तक उत्पादन पाइपलाइन के संदर्भ में योजना, परीक्षण और निदान की आवश्यकता पर बल देती है। कलाकार को पहले पहचानना चाहिए कि समस्या प्रकाश डिजाइन में है, सामग्री में, कैमरे में, रेंडरिंग सेटिंग में या कंपोजिटिंग में। इस क्रम से कार्य करने पर समय बचता है और टीम के बीच संवाद स्पष्ट होता है। विशेषकर समयबद्ध उत्पादन में सौंदर्य संबंधी निर्णयों को तकनीकी सीमाओं तथा संशोधन की जरूरतों के साथ जोड़ना ही पेशेवर रेंडरिंग अनुशासन है। निष्कर्ष में, डिजिटल लाइटिंग एंड रेंडरिंग उन त्रिआयामी कलाकारों, लाइटिंग आर्टिस्टों, विजुअल डेवलपमेंट विद्यार्थियों और विजुअल इफेक्ट्स पेशेवरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस से आगे जाकर प्रकाश आधारित निर्णय लेना सीखना चाहते हैं। फिल्म और एनिमेशन के प्री रेंडर्ड संदर्भ इसके केंद्र में है, इसलिए जो पाठक केवल रियल टाइम इंजन की तात्कालिक सेटिंग्स या नवीनतम प्रदर्शन अनुकूलन खोज रहे हैं, उन्हें इसे उस विषय की पूर्ण तकनीकी पुस्तक नहीं मानना चाहिए। फिर भी गेम आर्टिस्टों और रियल टाइम लाइटिंग अभ्यासियों को कंपोजिशन, रंग, एक्सपोजर, सामग्री प्रतिक्रिया और दृश्य पदानुक्रम के ऐसे सिद्धांत मिलते हैं जो माध्यम बदलने पर भी प्रासंगिक रहते हैं। इसकी व्यावहारिक शक्ति समस्या पहचानने की पद्धति में है। यह बताती है कि खराब दिखते रेंडर को केवल अधिक लाइट, अधिक चमक या अधिक प्रभाव देकर ठीक नहीं किया जा सकता। पहले यह समझना पड़ता है कि दृश्य का उद्देश्य क्या है और कौन सा घटक उस उद्देश्य को बाधित कर रहा है। समान श्रेणी की कई पुस्तकें किसी विशेष एप्लीकेशन, रेंडरर या एल्गोरिदम पर केंद्रित होती है। बर्न की पुस्तक का अंतर इसका व्यापक, कलाकार केंद्रित और उत्पादन जागरूक ढांचा है जिसमें प्रकाश की सौंदर्यात्मक भाषा तथा रेंडरिंग की तकनीकी प्रक्रिया साथ चलती है। इस कारण यह शुरुआती पाठक के लिए मजबूत वैचारिक आधार और अनुभवी कलाकार के लिए निर्णयों की समीक्षा करने का उपयोगी ढांचा प्रदान करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जेरेमी बर्न, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।